अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। शंकराचार्य के अनुसार भगवान की शक्ति के रूपांतर विकार के सिद्धांत को स्वीकार कर लेने से अप्रत्यक्ष रीति से यह भ्रम उत्पन्न होता है कि परम सत्य रूपांतरित होता है। तात्पर्य, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की टीका है कि यदि कोई ठीक से परिणामवाद अर्थात शक्ति के रूपांतर को नहीं समझता तो वह इस भौतिक जगत तथा जीव विषयक सत्य को कुछ दूसरा ही समझ बैठेगा। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, सन्मुला सौम्यमा प्रजा सदा यत्ना सत प्रतिष्ठा। भौतिक जगत तथा जीव पृथक पृथक है और वे शाश्वत सत्य है, मिथ्या नहीं है। किंतु शंकराचार्य व्यर्थ ही यह डरकर परिणामवाद से ब्रह्म रूपांतरित हो जाएंगे। उन्होंने ये मान लिया है कि जगत तथा जीव दोनों ही मिथ्या है और उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है। उन्होंने वाग्जाल द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जीवों का विशिष्ट तथा भौतिक जगत भ्रामक है और उन्होंने रस्सी को सर्प मानने या सीपी को सोना समझने के दृष्टांत दिए हैं। इस तरह उन्होंने अत्यंत भोंडे तरीके से सामान्य लोगों को ठगा है। रस्सी को सर्प समझने का दृष्टांत मांडू के उपनिषद में उल्लेखित है, किंतु वहां पर इसका आशय शरीर को आत्मा समझने की भूल कर बैठने की व्याख्या करना है। क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक कण है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, ममे वांशो जीवलोके। मनुष्य विवर्तवाद के कारण पशु सदृश आत्मा को शरीर मानने लगता है। यह विवर्त या भ्रम का सही उदाहरण है। अतत्वन्यथा बुद्धिर विवर्तता यद्युदारतः। श्लोक ऐसे विवर्त को बताता है, असली तथ्य को न जानकर तथा एक वस्तु को भूलकर दूसरी वस्तु मानना विवर्तवाद कहलाता है। प्रत्येक बद्ध जीव जो शरीर को आत्मा मानता है वह इस विवर्तवाद का शिकार होता है। जब कोई सर्वव्यापी भगवान की अचिंत्य शक्ति को भूल जाता है तो इसी विवर्तवाद का शिकार होता है। भगवान कभी न बदल कर यथारूप में किस प्रकार रहते हैं, इसकी व्याख्या ईशोपनिषद में मिलती है। पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईश्वर पूर्ण है, यदि उनसे पूर्ण जगत को निकाल लिया जाए तो भी वे पूर्ण ही रहते हैं। ये जगत भगवान की शक्ति से प्रकट है, किंतु वह तब भी वही व्यक्ति होता है। इसका रूप परिकार गुण आदि कभी क्षीण नहीं होते। श्री जीव गोस्वामी परमात्मा संदर्भ ग्रंथ में विवर्तवाद की टीका इस प्रकार करते हैं। विवर्तवाद के फेर में आकर मनुष्य पृथक जीवों को अर्थात जगत तथा जीव को ब्रह्म मान बैठता है। असली तथ्य के प्रति पूर्ण अनभिज्ञता के कारण ऐसा होता है। परम सत्य या परब्रह्म सदा एक ही रहता है। वह अस्तित्व की अन्य धारणाओं से पूर्ण मुक्त रहता है। वह मिथ्या अहंकार से पूर्ण मुक्त होता है, क्योंकि उनका स्वरूप पूर्ण आध्यात्मिक है। उनका अज्ञान तथा भ्रांति के फेर में आना असंभव है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि उनमें निर्मल गुण पाए जाते हैं जो प्रत्येक जीव में नहीं होते। वे सामान्य जीवों के दोषों से रंच पर भी कलुषित नहीं होते। इसलिए हमें परम सत्य को अचिंत्य शक्तियों से युक्त समझना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधश ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय कांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। परिणाम वादे ईश्वर हयत विकारी एतक ही विवर्त वाद स्थापना जे करी। शंकराचार्य के अनुसार भगवान की शक्ति के रूपांतर के सिद्धांत को स्वीकार कर लेने से अप्रत्यक्ष रीति से यह भ्रम उत्पन्न होता है कि परम सत्य रूपांतरित होता है। तो हम कई दिनों से श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर रहे हैं, इस सातवें अध्याय का, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की एक प्रकार से देखेंगे सातवें अध्याय को, कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वर्णन श्रील कृष्णदास कविराज बड़े ही विस्तार रूप से करते हैं और स्थापित करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से उनमें ये विशेष गुण है, अद्भुत वदान्य। तो पीछे कई श्लोकों से हम सुनते आए हैं कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस में थे और वहाँ जो खास बनारस के जो मायावादीज हैं उनके साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का यहाँ संवाद हो रहा है। श्री श्री राधा पार्षदी के, श्री गौरीता, सीताराम लक्ष्मण हनुमान के। तो चैतन्य महाप्रभु बनारस में जो मायावादियों के जो गुरु हैं, मायावादियों के जो प्रमुख नेता हैं, उनके जो आचार्य हैं, प्रकाशानंद सरस्वती के साथ चैतन्य महाप्रभु चर्चा करते हैं और इस चर्चा में कई विषयों पर उनकी चर्चा होती है और जिसमें विशेष रूप से प्रकाशानंद सरस्वती शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, मायावाद सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं या उस सिद्धांत की स्थापना करते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अद्भुत योग्यता से और पांडित्यता से उनका खंडन करते हैं। और जैसे कि पिछले श्लोक में चर्चा हुए थे कि प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं कि ये जो परिणामवाद है, परिणामवाद ये जो दर्शन है श्रील व्यासदेव का, ये ना गलत है। तो उस दर्शन को गलत स्थापित करने के लिए प्रकाशानंद सरस्वती व्यासदेव को ही गलत स्थापित करते हैं कि व्यासदेव का जो मन है, व्यास भ्रांत बलितार उठाइला विवाद, कि व्यासदेव का व्यासदेव ही वो गलत कहते हैं और ये स्थापित करते हैं कि जो ये विवर्तवाद है यही वास्तविकता में सही सिद्धांत है। तो परिणामवाद जो व्यासदेव का सिद्धांत है, जिसमें व्यासदेव कहते हैं कि भगवान की जो शक्तियां हैं उनके द्वारा ये जो जगत प्रकट हुआ है, तो शंकराचार्य भगवान की शक्तियों को स्वीकार नहीं करते। शंकराचार्य यदि भगवान की शक्तियों को स्वीकार करते हैं तो उनको फिर भगवान के साकार रूप को स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए उनके शक्तियों को स्वीकार नहीं करते और निराकार जो परम सत्य है उसकी स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी ये चर्चा यहाँ होती है और वो कहते हैं कि परिणामवाद का मतलब है कि यदि ये जगत भगवान से आया है तो इसका मतलब भगवान का कोई रूप नहीं होगा। उनसे सारी चीजें उन्होंने ही, उनका ही रूपांतरण है। विकारी का मतलब है उनका ही यदि रूपांतरण है ये जगत, तो फिर भगवान का कोई रूप ही नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से मायावादी जो सन्यासी है कई प्रकार की चर्चा श्री चैतन्य महाप्रभु से करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु उनको हर समय उनके व्याख्याओं का या उनके प्रमाणों का खंडन करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई दिनों से ये चर्चा चल रही है और एक प्रकार से तात्पर्य और इन पयारों को पढ़ते हैं तो लगता है कि कुछ निरस है, विवर्तवाद, परिणामवाद और कई ऐसी चर्चाएं आई हैं। तो जैसे कि पिछली बार हमने चर्चा की थी कि जगन्नाथपुरी में जो भगवान आचार्य थे उनके जो भाई थे गोपीनाथ आचार्य, वो भी मायावाद सिद्धांत का अध्ययन करके बनारस से लौटे थे जगन्नाथपुरी में। तो भगवान आचार्य ने कहा था कि स्वरूप दामोदर को कि मेरे जो भाई हैं वो वेदांत सूत्र का अध्ययन करके आए हैं जगन्नाथपुरी से, तो हम सब मिलकर वेदांत सूत्र को उनसे सुनते हैं। तो स्वरूप दामोदर भागवत जो आचार्य हैं भगवान आचार्य उनको डांट लगाते हैं कि ये मायावाद सिद्धांत यदि महाभागवत भी सुनेगा तभी भी उसका जो मन है वो विचलित हो सकता है। और वो फिर भगवान आचार्य कहते हैं कि हम तो हमारा मन भगवान में बहुत ज़्यादा स्थिर है, भगवान के चरण कमलों में हम विचलित नहीं होंगे। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं कि ठीक है, लेकिन फिर भी हम यदि सुनेंगे भी तो हमें क्या सुनने को मिलेगा? जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और इस प्रकार की चर्चाएं होगी जो बिल्कुल ही निरस है, इससे अच्छा क्या फायदा इस चीज को सुनने को। और वो मायावादी सिद्धांत से भगवान की एक प्रकार से निंदा भी करेंगे। तो जब भक्त उस चीज को सुनता है तो उसके हृदय में बहुत भारी ठेंच पहुंचती है, तो इसलिए जो भक्त है उनकी व्याख्याओं को सुनना भी नहीं चाहता, जो शंकराचार्य का जो शारीरिक भाष्य है। तो इसलिए इस प्रयास से हम समझ सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा आधा जो अध्याय है सातवां, ये इसी चर्चा पर है, प्रकाशानंद सरस्वती और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद। तो इस चर्चा से एक बात हमें समझ में आती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कितनी वदान्य है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः, कि मैं ऐसे गौरांग देव को प्रणाम करता हूँ जो ये जगत में सबसे ज्यादा दया दयालु है। इसलिए कृष्णदास कविराज अंत्य लीला में चैतन्य महाप्रभु के इस विशेष एक गुण को प्रकट करते हैं और इस विशेष गुण को पूरे विश्व के सामने प्रकट करते हैं चैतन्य महाप्रभु के। तो कृष्णदास कविराज अंत्य लीला में कहते हैं, अद्भुत दयालु चैतन्य अद्भुत वदान्य ऐसे दयालु दाता लोके नाही सुनी अन्य। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं अद्भुत दयालु चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु क्या है, सामान्य व्यक्ति के समान दयालु नहीं है, अद्भुत उनके हृदय में दया है, दयालु अवतार है चैतन्य महाप्रभु। बाकी लोग दया करते हैं शरीर के ऊपर, तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु दोनों चीजों पर वो अपनी दया प्रकट करते हैं। अद्भुत वदान्य, उनका वदन्य क्या है, वदन्य का मतलब है दानी, जो वहां वो दान देते हैं वो सर्वश्रेष्ठ चीज श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत को दान दे रहे हैं। ऐसे दयालु दाता लोके नाही शून्य अन्य। कृष्णदास कविराज कहते कि मैंने कई डोनर्स इनकी चर्चा सुनी है, बड़ा बड़ा दान देते हैं, लेकिन ऐसा बड़ा डोनर जो दानी है श्री चैतन्य महाप्रभु उनके समान मैंने किसी के बारे में सुना नहीं है। तो हम पीछे देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि ये एक चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लेने का कारण था, स्पेशली मायावादियों को कृष्ण प्रेम भी प्रदान करना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्णदास कविराज जब चैतन्य महाप्रभु के वदान्यता का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सारे लोगों को कृष्ण प्रेम देने के लिए आए थे, इसी कारण क्या इतनी आवश्यकता है चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, अपना समय व्यस्त नहीं कर रहे वहां चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि महाप्रभु का संन्यास लेने का यह भी एक कारण था कि वो क्या चाहते थे, मायावादियों को भी ये जो दिव्य कृष्ण प्रेम है वो भी प्रदान करना चाहते थे। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, मैं कुछ प्यारों को पढ़ूंगा, पात्र पात्र विचार नाही नाही स्थान स्थान, जय जहां पाय तहां करे प्रेमदान। तो चैतन्य महाप्रभु का स्वभाव क्या है कि चैतन्य महाप्रभु पात्रा पात्र योग्य है या अयोग्य है इस बात को नहीं देखते। जो भी व्यक्ति जिस किसी स्थान में है उसे श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम प्रदान करते हैं। और कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए थे तो इस संसार में प्रेम वन्य आ गई। प्रेम वन्य का मतलब है प्रेम की बाढ़ आ गई, और ऐसी प्रेम की बाढ़ आ गई नाम संकीर्तन रूपी जो प्रेम है कि सारा जगत इस नाम संकीर्तन की बाढ़ से आप्लावित हो गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सारा जगत डूब रहा है इस कृष्ण प्रेम की बाढ़ में, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बाढ़ में डूब नहीं रहे हैं, वो भाग रहे हैं। तो वो कौन से लोग थे? मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गान, निंदक पाषंडी जता पढ़ो या आधाम। तो सबसे पहले थे जो चैतन्य महाप्रभु के इस प्रेम रूपी बाढ़ में डूबना नहीं चाहते थे, वो भागना चाहते थे दूर। तो सबसे पहले ये भागते हैं मायावादी, चैतन्य महाप्रभु से दूर भागते हैं। कर्मनिष्ठ जो सकाम कर्मी है, फिर कुतार्किक गण है तर्क करने वाले, निंदक है जो निंदा करते हैं वैष्णवों की भक्तों की, पाषाणी जो ढोंगी है, और जो पढ़ो या अधम। चैतन्य महाप्रभु के कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो विद्यार्थी थे जो अधम, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को नहीं स्वीकार करते थे। तो इस प्रकार से ये लोग चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन से दूर भाग रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए इस बात को सोचा कि मुझे इन लोगों को कृष्ण प्रेम में डुबाना है, क्योंकि मैं केवल यहाँ आया हूँ किस चीज के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आया हूँ। और जब देखता हूँ कि कुछ लोग इससे भाग रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु सोचने लगते हैं। और फिर कृष्णदास कविराज कहते हैं, एत बलि मने किछु करे अविचार, संन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। तो ये सारी बातें चैतन्य महाप्रभु ने अपने मन में सोची कि ये लोग भाग गए हैं, इसी कारण चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि चैतन्य महाप्रभु ये जो मायावादी सन्यासी हैं जिनको इतना समय दे रहे हैं और जिनको कृष्ण प्रेम से अप्लावित करना चाह रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की ये जो वदान्यता है वो हमें कई ग्रंथों में प्राप्त होती है, और विशेष रूप से श्रील कृष्णदास कविराज ने चैतन्य महाप्रभु के दया का जो वर्णन है अपने चैतन्य चरितामृत में कई स्थानों में किया है। और वो एक स्थान में कहते हैं कि हे लोगों, कि आप जरा थोड़े समय के लिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोचो, उनके इस गुण के बारे में सोचो कि वो कितने दयालु हैं या कितने बड़े दानी हैं। तो आप थोड़ा सा भी विचार करोगे तो आपके हृदय में चमत्कार आप अनुभव करोगे। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, सब उच्चारण करिए जोर से, श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, आप थोड़े भी बुद्धिमान हो तो आप थोड़ी देर के लिए रुको और श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोचो, और महाप्रभु के कौन से गुण को सोचो कि वो कितने बड़े दयालु हैं। और यदि आप गंभीरता से श्री चैतन्य देव के इस दयालुता का वर्णन आप सुनते हो या उनके इस गुण के बारे में या गुण पर मेडिटेट करते हो तो आप अनुभव करोगे कि संसार में कोई व्यक्ति, किसी की मुझे शरण ग्रहण करनी है तो वो केवल एक ही है, वो है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए श्रील वृंदावन दास ठाकुर भी अपने ग्रंथ में चैतन्य भागवत में बड़े विस्तार से चैतन्य महाप्रभु की इस दया का वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ये जो प्रेम है वो हर एक व्यक्ति को दिया है। कहते कि इवन जो जगाई और जो मदाई है उनको भी ये प्रदान किया है। जगाई मदाई की खासियत क्या थे? हे न पाप नाहि जहां ना करे द्विजन, कि ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो जगाई मदाई ने नहीं किया था। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं लोगों के घर जलाना, ब्राह्मणों को तंग करना, शराब पीना, डाका चोरी मद्य मांस करे भोजन, चोरी करना, मद्य पीना, मांस खाना, ये कई प्रकार के जितने भी पाप है वो सारे पाप जगाई और मदाई ने किए थे। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? अपनी कृपा इतने निम्न कोटि के लोगों पर भी प्रदान की है। तो ये विशेषता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के समय केवल दो ही थे, जगाई और मदाई। लेकिन आजकल जहां भी देखो सब जगाई मदाई नजर आते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की ये जो दया, इवन जो सबसे अधिक पापी जगाई मदाई है उनको भी प्राप्त हुई है, तो ये अद्भुत है। इसलिए चैतन्य भागवत में छोटी सी लीला आती है कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में थे तो चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है कृष्ण से। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो कृष्ण के अलावा दूसरे कोई नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो जब वे नवदीप में अवतरित होते हैं तो अपने कई प्रकार की लीलाएं वो नवदीप में प्रकट करते हैं। और रोज ऐसा वर्णन आता है कि सारे देवी देवता अपना अपना रथ या अपना अपना व्हीकल कार लेकर पहुंचते थे नवदीप में, और ऊपर से देखते थे दिन भर चैतन्य महाप्रभु या निमाई क्या क्या दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। तो पूरा दिन वो नवदीप में बिताते थे, और जैसे शाम हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु सो जाते थे तो ये सब लोग आनंद से नाचते हुए वापस जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये सारे लोग नवदीप में आए, अपना अपना जो एरोप्लेन है वो इतनी भीड़ हो गई थी कि नवदीप में लैंड करने के लिए एरोप्लेन उनका जगह ही नहीं बची थी। तो सब लोग ऊपर से ही देख रहे थे अपने अपने विमान से, और क्या देख रहे थे कि आज विशेष एक लीला श्री चैतन्य महाप्रभु ने की थी कि सबसे जो अधिक जो पापी व्यक्ति है नवदीप के दो भाई उनको ब्रह्म दैत्य, वृंदावन दास ठाकुर कहते ब्रह्म दैत्य, ये दो ब्राह्मण थे। जगाई मदाई कौन थे? ब्राह्मण परिवार में थे। एक का नाम था माधवानंद और दूसरे का नाम था जगदानंद। आप सोचिए इतने ब्राह्मण परिवार के, लेकिन क्यों इतना पाप कर्मों में वो लगे थे? असत संग, बैड एसोसिएशन, जिसके कारण इन्होंने अपने जो ये ब्राह्मण के सारे कार्यकलाप है उनको त्याग दिया और ये घृणित कार्यों में अपने आप को लगाया। तो जगाई और मदाई कई प्रकार के प्राप्त करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के द्वारा उनका उद्धार किया, और इस बात को जब सारे देवी देवताओं ने देखा तो बड़े आनंदित हो गए, और ये सब लोग फिर वापस निकलने लगे। और यही भावना थी, शिव जी भी थे उसमें, ब्रह्मा जी भी थे, गणेश जी भी थे, इंद्र भी थे, चंद्र भी थे, सूर्य भी थे, कई सारे यमराज भी थे। तो ये सारे लोग देख रहे थे और अभी वापस ही निकल रहे थे बड़े आनंद से, और सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु हैं, कि इसका मतलब श्री चैतन्य देव इतने घृणित लोगों का भी उद्धार कर सकते हैं, तो इसका मतलब हमारा भी उद्धार निश्चित रूप से हो सकता है। मतलब आशा है, हमारा भी उद्धार हो सकता है, कि आशा है अभी। तो फिर जब वापस जा रहे थे तो यमराज जी अपने रथ पे सवार थे तो यमराज के साथ उनके सारे संगी भी थे, यमदूत भी थे और चित्रगुप्त भी थे। तो यमराज ने पूछा चित्रगुप्त जी से कि हे चित्रगुप्त, चित्रगुप्त वो पर्सनालिटी है जो सबका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं यमलोक में कि किसने क्या क्या कार्य किया है, यहाँ पापमय कार्य। जो चित्रगुप्त से पूछते हैं कि हे चित्रगुप्त जरा तुम बताओ कि इन लोगों ने क्या क्या पाप किए थे, थोड़ा मुझे ब्योरा सुनाओ, न्यूज़ मुझे सारी न्यूज़ बताओ, हिस्ट्री बताओ उनके पाप कर्मों की। तो चित्रगुप्त जैसे बताने लगते हैं, कहते कि हे राजा आपको मैं क्या बताऊं, वर्ड्स नहीं है, शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए उनके कार्यकलापों को। इतना सारा पापमय कार्य उन्होंने किया है कि 1,00,000 मुनिम जी होते हैं ना, जो लिखते रहते हैं, हिसाब किताब लिखते हैं, 1,00,000 मुनिम जी 1 महीने तक यदि आप पढ़े जितना भी लिखा हुआ है, तभी भी उनका पाप इन्होंने किया है, वो सारी पाप कथा कभी खत्म नहीं हो सकती। इतना बड़ा इनका खाता है, एक ही खाता नहीं है, इतने सारे खाते नोटबुक्स भर गए हैं उनके पाप कार्यों के बारे में लिखने से कि सुमेरु के समान कई सारे पहाड़ बन गए हैं। तो ये सुनकर बड़ा दुख होता था यमराज को। और जब चित्रगुप्त कहता है कि कभी कभी मुझे भी रोना आता है इस जगह और मधाई पर कि इतना पाप किया है और मरने के बाद ये नरक यातना के लिए इनको बुलाया जाएगा तो कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, मुझे भी दया आती है, मैं भी रोता हूँ कभी कभी, चित्रगुप्त कहते हैं। तो लेकिन कहते क्या हुआ कि ये जो अवतार अभी नवदीप में हुआ है श्री चैतन्य देव का, वो विशेष है। इन्होंने क्या किया, इतना सारा पाप इन्होंने किया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या कर दिया, एक क्षण में ही सारा जो उसका परिणाम इनको भुगतना था वो खत्म कर दिया है, अभी उनको यमलोक आने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे यमराज ये सुनते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं, मतलब बेशुद्ध हो जाते हैं, मूर्छित होकर वो गिर पड़ते हैं। तो सारे यमदूत रोने लगते हैं, चित्रगुप्त रोने लगते हैं क्योंकि उनके स्वामी गिर गए हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर काफी विस्तार से वर्णन करते हैं चैतन्य भागवत में। और क्योंकि ये सारे लोग वापस जा रहे थे सबके जो रथ हैं, तो शिवजी और ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे कि ये यमराज का जो रथ है वो गिरा हुआ है, वो रथ पे गिरे हुए हैं और सब लोग बड़े आनंद से नाचते गाते हुए जा रहे हैं, चैतन्य देव का गुणगान करते हुए हैं। तो शिवजी और ब्रह्मा जी वापस आते हैं, कृष्णा वेश है न जानी अज पंचानन। तो देखते हैं कि ये बेशुद्ध हो गए हैं, ब्रह्मा जी और शिवजी रथ के पास आते हैं और क्या करते हैं, कर्ण बोले सबे मिली कर कीर्तन, उनके कान के पास जाते हैं और जोर से कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। जैसे यमराज ये दिव्य ध्वनि सुनते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की, तुरंत जग जाते हैं और नाचने लगते हैं और पुनः चैतन्य महाप्रभु का गुणों का स्मरण करते हुए हैं। तो इतना विस्तार से वर्णन है, हर एक देवता का वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर, और कौन कैसे नाच रहा था, अपने संगी किसके साथ नाच रहा था, इस सब का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत वदान्य है, ये दया दयालु अवतार है श्री चैतन्य देव। वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते, वह उनकी डिजायर है, इसलिए तो वो आए हैं। क्या चीज लेकर, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, कि गोलोक का जो प्रेम धन है हरि नाम संकीर्तन वो श्री चैतन्य महाप्रभु लाए। और उन्होंने भेद पात्रा पात्र नहीं, उन्होंने नहीं देखा कि ये बालक है, ये वृद्ध है, या ये स्त्री है, या ये पुरुष है, ये यवन है, ये म्लेच्छ है, ये पशु है, चैतन्य महाप्रभु की भावना क्या है कि हर एक को वो कृष्ण प्रेम दान कर रहे हैं, हर एक उसको चैतन्य महाप्रभु हर एक जो जीव है उसको दे रहे हैं। इसलिए आदि लीला में वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु कि मैं तो एक गार्डनर हूँ, माली हूँ, और मैं एक वृक्ष ले आया हूँ जो मैंने नवदीप में मैंने उसको रोपण किया है और उसको मैं सिंचन करता हूँ और उसके इतने फल निकले हैं कि मैं अकेला माली कितना फल खाऊं और अकेला कितना बांटू भी मैं ये जो फ्रूट्स हैं। तो कहते कि आप सब लोग आओ और इस फल को खाओ और फिर दूसरों को भी क्या करो, बांटो। हाँ, क्योंकि ऐसा फल है कि हउ का लोक अजर अमर है कि कोई भी व्यक्ति इस फल को खाता है तो अजर अमर हो जाएगा, पुनः उस व्यक्ति को जन्म मृत्यु के इस धारा में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का गुणगान आदि लीला के 90 अध्याय के शुरुआत के पहले श्लोक में कृष्णदास कविराज करते हैं और वो कहते हैं कि तम श्रीमद कृष्ण चैतन्य देवम वंदे जगत गुरु, कि मैं ऐसे जगत गुरु श्री चैतन्य देव की वंदना करता हूँ। यशानुकंपाया स्वापी महाब्धि संतरेत सुखम, कि जिनकी अनुकंपा से शो अपी एक कुत्ता भी क्या कर सकता है, महाब्धि, महाब्धि का मतलब सागर को पार कर सकता है। कभी कभी आप देखते हैं कुत्ते को नदी में या किसी पानी के तालाब में कुत्ता तैरते जाता है और बीच में से वापस आ जाता है किनारे पर, वो पार नहीं कर सकता। लेकिन कृष्णदास कविराज कहते हैं कि महाप्रभु की कृपा से बड़ा सा बड़ा जो दुर्लंघ सागर है जिसको पार करना बहुत कठिन है, ऐसे सागर को भी ये कुत्ता इजीली पार कर सकता है। ये है चैतन्य महाप्रभु की कृपा। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये कुत्ता भी सागर को पार कर सकता है। तो आप सोचिए फिर हमारे जैसे जो मनुष्य है जो चैतन्य महाप्रभु की शरण लेना चाहते हैं तो क्यों नहीं संसार सागर से पार हो सकता। लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल में एक लीला का वर्णन करते हैं, आपने वो दिव्य लीला सुनी होगी चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु नवदीप में थे तो बहुत छोटे से बालक थे, तो उनको आनंद आता था अपने मित्रों के साथ खेलने कूदने में। तो कभी कभी वो गंगा के किनारे जाते थे और कई प्रकार की लीलाएं करते थे। तो एक दिन अपने मित्रों के साथ जब गए तो कई सारे उनको एक कुत्ते के बच्चे, क्या कहते हैं उनको, पिल्ले, पिल्ले मिले उनको। हाँ, तो बहुत सारे पिल्ले थे, तो जो बच्चे थे सारे वो चूज कर रहा था हर कोई कि ये बहुत सुंदर है ये मैं रखूंगा, ये बहुत सुंदर है मैं रखूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत शक्तिशाली है, उन्होंने सबसे जो सुंदर पिल्ला था उसको चुन लिया और उन्होंने कहा मैं इसको रखूंगा। तो सब बच्चे शरारत करने लगे, तुम अपने आप को बड़ा पंडित समझते हो या फिर शक्तिशाली समझते हो। और महाप्रभु ने स्वयं एक पिल्ला उठाया और कहा कि चलो अभी हम हमारे घर चलते हैं और वहां जाकर पिल्ले के साथ खेलेंगे। तो चैतन्य देव या जो निमाई है गए, घर गए और उन्होंने क्या किया, उनके घर में एक चेयर था, कुर्सी था, उस कुर्सी को इस पिल्ले को बांध दिया। कभी पिल्ले को अपने शरीर पर लेते थे, ऐसे कई प्रकार से उस पिल्ले के साथ खेल रहे थे सब बच्चे। तो खेलते खेलते बच्चों में फाइट हो गई आपस में, तो एक बड़ा शरारती लड़का था वो निमाई से फाइट करने लगा। तो निमाई कहते हैं कि तुम तो हर बार जब भी खेलते हो तो हर समय फाइट ही करते हो, निकल जाओ यहाँ से। तो उसको बड़ा क्रोध आया कि अभी मैं तुम्हारा ये करता हूँ, गर्वनाश करता हूँ। तो वो बच्चा क्योंकि सची माता घर में नहीं थी, तो सची माता गंगा के किनारे गए थे, तो वो बच्चा दौड़ते हुए सची माता के पास जाता है कंप्लेंट करने कि सची माता देखो आपका जो निमाई ब्राह्मण है और वो एक पिल्ले के साथ खेल रहा है, कुत्ते का जो पिल्ला है। सची माता बड़े क्रोधित हो जाती कि ब्राह्मण होकर एक बच्चे पिल्ले के साथ खेलना कुत्ते के, ये ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि अशुचि है, हाँ, अस्वच्छ है। तो निम्न जो सच्ची माता दौड़ते हुए आती है और आते ही कहते कि हे निमाय, मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ, तुम ऐसे उस पिल्ले के साथ खेलोगे? तुम तो एक ब्राह्मण के पुत्र हो, जगन्नाथ मिश्र तुम्हारे जो पिता है इतने विख्यात है और इतने बड़े ब्राह्मण है, सब लोग उनका आदर करते हैं, और तुम यदि इस पिल्ले के साथ खेलोगे हाँ तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। हाँ, तुम लो क्लास के बच्चों के साथ खेल रहे हो, छोड़ो, देखो मैंने कितने सुंदर के वस्त्र तुम्हें पहनाए थे, सारे हाँ गंदे हो गए हैं। तो इस प्रकार से सची माता निमाय के साथ चर्चा करती है और कहते हैं कि हे निमाय, अभी तुम जाओ गंगा में स्नान करने के लिए जाओ, हाँ, और फिर तुम्हारे लिए मैं कुछ संदेश, लड्डू, हाँ, गुलाब जामुन वो बना के रखूंगी। तो निमाय को सची माता भेजती है और निमाय कहता है कि लेकिन हे माँ, हाँ, तुम क्या करो? निमाय अपने माँ को आई कहते थे, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सची माता को आई कह के पुकारते थे। तो कहते हैं कि हे माता, लेकिन मेरा जो ये पिल्ला है इसका ध्यान रखना, हाँ, ये घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मदर सची कहती है कि हाँ ठीक है, हाँ तुम जाओ, मैं उसका ध्यान रखूंगी। तो निमाय पंडित, हाँ, जो निमाय चले जाते हैं, स्नान करते हैं काफ़ी समय है। तो ये सची माता क्या करती है, पीछे से उस पिल्ले को खोलती है और छोड़ देती है। तो ये बात, हाँ, जब छोड़ते समय निमाय का एक मित्र था जिसने देखा था कि सची माता ने उस पिल्ले को खोला है और वो पिल्ला चला जाता है। तो वो बच्चा, वो जो मित्र है निमाय का, वो दौड़ते हुए जाता है चैतन्य महाप्रभु के पास, निमाय के पास, और कहता है कि हे निमाय, देखो कि तुम्हारी माँ ने उस पिल्ले को छोड़ दिया है। तो निमाय को बहुत गुस्सा होता है। हाँ, निमाय आते दौड़ते हुए कहते कि हे माँ, कहाँ है, हाँ कहाँ है मेरा, हाँ जो प्रिय जो पिल्ला है, हाँ। तो वो देखते कि है नहीं, कहते कि मैंने तो देखा कि अभी वो बाहर खेल रहा था, शायद कोई चोर आ गए होंगे जो उसको ले गए हैं। तो इस प्रकार से कहते हुए निमाय रोने लगते हैं, हाँ, उस पिल्ले के विरह में। और फिर सची माता कहते कि रो मत, हाँ, ये लड्डू और संदेश खाओ, कल हम आपके पिल्ले को ढूंढ के ले आएंगे। तो लेकिन निमाय पंडित से रहा नहीं जाता। तो लोचनदास ठाकुर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के इस लीला पर, गौरंग परश से कुकुर भाग्यवान, स्वभाव छाड़िया तार हैल दिव्य ज्ञान, कि गौरंग महाप्रभु के स्पर्श से वो जो पिल्ला है इतना भाग्यवान बना कि स्वभाव छाड़िया तार हैल दिव्य ज्ञान, कि अपने स्वभाव को उसने छोड़ दिया, हाँ, लेकिन उसको क्या हुआ, दिव्य ज्ञान, हाँ, प्राप्त हुआ उस पिल्ले को। और वो क्या करने लगा, राधा कृष्ण गोविंद बलिया डाके नाचे, देखी न दिया रलोक धाय सब पाछे। वो पिल्ला नवदीप के चौक कहते हैं चारों चौराया, हाँ, चौराहे पर गया वो पिल्ला और खड़ा होकर अपने दोनों हाथ ऊपर करते चिल्लाने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जैसे देखा कि उस पिल्ले के दोनों हाथ ऊपर और दोनों पांव नीचे थे और जोर जोर से हरि नाम का उच्चारण कर रहा था, राधा कृष्ण गोविंद बलिया डाके, हाँ, जोर जोर से बुला रहा था राधा कृष्ण को। तो यह देखकर नवदीप का हर एक वासिक दौड़ते हुए आया उस चौराहे पर और देखने लगा उस अद्भुत पिल्ले को। और क्या था, कुकुरे रावेशये मत सबे देखी, पुलकित सब अंग अश्रुमय आखी, अश्रुमय आखी, उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, हाँ, लोचनदास ठाकुर कहते हैं। और रोमांच हो रहा था उसके सारे, हाँ, मतलब भाव, कृष्ण लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि सारे जो भाव के लक्षण है वो जो पिल्ला है, नयनम गलद अश्रु धारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा, हाँ, वो जो पिल्ला प्रकट कर रहा था। और क्या था, तो कोई इसलिए इस कथा से पहले लोचनदास ठाकुर कहते हैं जो चैतन्य महाप्रभु में विश्वास नहीं है जिनको तर्क करने की तर्क करने का जो बीमारी हुआ है, वो ये लॉर्ड चैतन्य की इस दिव्य लीलाओं को नहीं समझ सकते, हाँ वो विश्वास नहीं करते। इसलिए वैष्णव कहते हैं विश्वास से कृष्ण मिले तर्के बहु दूर। हाँ, विश्वास से क्या मिल सकते हैं? कृष्ण, फेथ, तर्के बहु दूर। हाँ, इसलिए जो श्रद्धा है भगवान के इस दिव्य लीलाओं के प्रति, वो बहुत आवश्यक है। और उस श्रद्धा को विकसित किया जा सकता है साधु गुरु और शास्त्र से। हम नियमित रूप से सुनते हैं, हाँ, तो हमारी जो ये अलौकिक श्रद्धा है, लौकिक श्रद्धा और अलौकिक श्रद्धा, जो दिव्य श्रद्धा है, ये बढ़ती है। तो इसलिए कहा गया है कि भक्तों को अधिक से अधिक साधु गुरु शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए और अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। तो एक प्रकार से लगेगा कि ये ऐसी कथाएं हैं, हाँ, जैसे रात को जो ग्रैंड मदर्स होती हैं और छोटे बच्चों को सुलाती है, हाँ, उसको कहते आई माँ कथा। हाँ, उड़िया में कहते आई माँ कथा, मतलब रात को जो ग्रैंड मदर सुलाती है तब वो बच्चे को कथाएं सुनाती है। तो ये कथाएं वैसी कथाएं नहीं है, ये कथाएं क्या है? दिव्य है। इनको सुनकर और इनके पीछे का जो तत्व है उसको जानता है तो कृष्ण कहते हैं क्या होता है, हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म। व्यक्ति अपने शरीर को त्यागेगा तो नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, उस व्यक्ति को जन्म मृत्यु के इस चक्कर में वापस नहीं आएगा। तो इसलिए लोचनदास ठाकुर इस लीला से पहले सावधान करते हैं, हाँ, कि आपको फेथ के साथ, श्रद्धा के साथ इसको सुनो और ये जानो कि ये चैतन्य देव की दिव्य लीलाएं हैं। अचंबित श्वान देह छाड़ी भाग्यवान विष्णु लोक हया करे गोलोक प्रयाण। उसने शरीर छोड़ दिया और गोलोक प्रयाण किया। तो कहते हैं कि उस समय एक सुवर्ण रथ आता है, कई मणियों से वो विभूषित था और गंधर्व किन्नर आते हैं। जब इस दिव्य शरीर इसको प्राप्त होता है, इस पिल्ले को, और उस रथ पे जब बैठता है तो सब लोग उसकी स्तुति करने लगते हैं। तो इसलिए ये बात भी ब्रह्मा और शिव जी ने देखी थी और वो भी वर्णन करते हैं कि कितने अद्भुत हैं, हाँ, ये चैतन्य देव। कुकुर उद्धार करे गोलो के पाठाए दिव्य देव है न कबू के हो ना ही पाए। कि ये कुत्ते का भी उद्धार किया है चैतन्य महाप्रभु ने। हाँ, तो इस प्रकार से चैतन्य देव की इस जो दिव्य दयालुता है या वदान्यता है, हाँ, ये मेडिटेट करने योग्य है। हाँ, तो इस दिव्य गुण पर भक्तों को ध्यान करना चाहिए या स्मरण करना चाहिए। और भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने लीलाओं में कई स्थानों में इस दिव्य गुण को प्रकट किया है। और जब भक्त इस दिव्य गुण के बारे में सोचता है, मेडिटेट करता है, सुनता है, तो उसके हृदय में एंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ, मैं भी निच हूँ, लेकिन आशा है कि चैतन्य महाप्रभु, मैं कुत्ते से भी ज़्यादा गया गुजरा हूँ। कुत्ते ने तो दोनों हाथ ऊपर करके बोला था, हाँ, हरि नाम, हाँ, जोर से, हाँ, तो कुत्ते का उद्धार हो सकता है तो क्यों नहीं, हाँ, चैतन्य महाप्रभु मेरा उद्धार कर सकते हैं। तो ये भक्त का गुण होता है, हाँ, कि वो देखता है कि कृष्ण क्या है, दीन बंधु है। हाँ, भक्त दौड़ता है, एक व्यक्ति दौड़ा कि कृष्ण दीन बंधु है, क्योंकि हर इस जगत में हर समय हम माया के थप्पड़ खा रहे हैं, कई प्रकार के कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, हर समय दुखी हैं। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी समस्या पहाड़ के समान खड़ी हो जाती है। तो व्यक्ति हर समय दुखी है तो वो देखता है कि कृष्ण क्या है, दीन बंधु है, तो दौड़ता है कृष्ण की ओर। तो लेकिन कृष्ण के नजदीक जाता है तो लेकिन देखता है, उसको तुरंत दूसरा गुण सुनने को मिलता है, कृष्ण क्या है, भक्त वत्सल है। तो सोचता है मुझे पहले क्या बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए। इसलिए भक्त, हाँ, कृष्ण अपनी वत्सलता दिखाएंगे, क्योंकि कृष्ण अपनी वत्सलता भक्त के प्रति दिखाते हैं, सबके प्रति नहीं। जैसे जो गाय है वो अपना प्रेम एक बछड़े के प्रति, हाँ, दिखाती है, हाँ, बल्कि जो गाय से जब बछड़ा जन्म लेता है वो इतना गंदा होता है, फिर भी माँ जो गाय है वो उस बछड़े को चाटती है, इतना गंद भरा होता है उस बॉडी में बछड़े के, लेकिन माँ क्या करती है, उसको दूर नहीं करती, उसके हृदय में उत्सल वत्सलता या प्रेम होता है उसके प्रति, और चाटती है अपने जीवा से और उस बछड़े को साफ करती है। तो उसी प्रकार से कृष्ण है, तो इस प्रकार कृष्ण की हमें अनुकंपा प्राप्त करनी है तो भगवान के इस गुण पर मेडिटेट करना चाहिए कि चैतन्य के समान इस संसार में कोई दयालु या वदान्य नहीं है। तो मुझे ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, और इसी कारण से चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कई स्थानों में कहते हैं भजो भजो भाई, लोचनदास ठाकुर कहते हैं भजो भजो भाई चैतन्य नेताय सदृढ़ विश्वास करी। हाँ हे भाई, भजन करो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद देव का सदृढ़ विश्वास के साथ। तो इस प्रकार से सारे आचार्य इस ओर हमें बढ़ाते हैं कि कृष्ण को जानना तो बहुत कठिन है, उनकी लीलाओं को समझना भी बहुत रहस्यमयी है, लेकिन हम भगवान कृष्ण को बहुत सरलता से समझ सकते हैं यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्य लीलाओं को समझेंगे। तो आज के श्लोक में चैतन्य महाप्रभु इसी बात का एक प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपनी जो दया है वो मायावादियों के प्रति प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि मायावादी क्या है, कृष्ण अपराधी। तो इस श्लोक से या इस चर्चा से, प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु की चर्चा से हम यही सीख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बहुत ज़्यादा दयालु हैं, और ऐसे दयालु गौरांग देव का आश्रय हमें लेना चाहिए। इसलिए आज हमारे एक आचार्य हैं जिनका नाम है श्रील वासुदेव घोष, वो अपने गीत में भी कहते हैं, जैसे मुक्तिदाता प्रभु ने गाया था गौरांग तुम्हें मोरे दया ना छाड़ियो, रोते हैं वासुदेव घोष, वो कहते हैं कि हे गौरांग आप मेरे ऊपर की जो दया है वो मत छाड़ो, छाड़ो मीन छोड़ो मत, मेरे ऊपर हर समय दयालु रहो, दया करो। तो वो गीत भी बहुत सुंदर है जिसको आप पढ़ सकते हैं आज के दिन। वासुदेव घोष के कई गीत हैं जिनमें स्पेशली उनके जो गीत हैं चैतन्य महाप्रभु के ऊपर हैं, और आज उनका तिरोभाव है तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे 4-5 मिनट के लिए, क्योंकि शास्त्रों में या ग्रंथों में श्रील वासुदेव घोष के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होती, लेकिन चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में कुछ ही स्थानों में श्रील वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि श्रील वासुदेव घोष कायस्थ परिवार के थे, और ये तीन भाई थे। तीन भाई कौन कौन थे, वासुदेव घोष और श्री माधव घोष और गोविंद घोष, ये तीन भाई थे, और ये तीन भाई फेमस कीर्तनिया थे, फेमस सिंगर थे। ये जब गाते थे तीनों तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु खड़े नहीं हो सकते थे, उनको नाचना पड़ता था। वो नाचते थे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, और वर्णन आता है कि जब रथ यात्रा के समय जगन्नाथपुरी में सात ग्रुप बनाते थे चैतन्य महाप्रभु, तो ये लीडिंग सिंगर्स होते थे उनमें से, वासुदेव घोष या गोविंद घोष। तो ये बंगाल में उत्तर राड जो प्रांत है उसमें इन्होंने जन्म लिया था, और चैतन्य महाप्रभु के निजी संगीत है, और इन्होंने वासुदेव घोष ने कई गीत लिखे हैं जिनमें से एक गीत में वो कहते हैं कि हे गौरांग महाप्रभु आप तो पहले अवतार में आप श्री राम के रूप में आए थे, और आपने लंका जाने के लिए एक ब्रिज बनाया था, सेतु बनाया था, लेकिन आप अभी गौरांग देव के रूप में आए हो तो आपने ब्रिज बनाया है। कौन सा ब्रिज है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कहते हैं कि आपने ये जो पवित्र हरे नाम है उसका ब्रिज कलियुगा में बनाया है, और इस ब्रिज से, इसमें कोई टोल टैक्स नहीं है, आजकल ब्रिज बनाते हैं तो आपको हर समय टोल टैक्स दो, है ना, कितनी चीजें देनी पड़ती है, जाते समय भी दो आते समय भी दो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो ब्रिज बनाया है हरि नाम, ये कोई टोल टैक्स नहीं है, फ्री। हाँ, इसमें जो चलेगा इससे कोई भी पार हो सकता है। हाँ, अंधा पंगु, हाँ, स्त्री वृद्ध पुरुष बालक, हर कोई, हाँ, इससे पार हो सकता है। और मृत्यु और जन्म का जो सागर है, हाँ, उसको ये पार कर सकता है। तो इनके गीतों को आप पढ़ सकते हैं, और इन्होंने दो ग्रंथ लिखे हैं, एक का नाम है श्री गौरांग चरित्र और दूसरा नाम है निमाई संन्यास, हाँ, नित्यानंद, हाँ, निमाई संन्यास उन्होंने लिखा। तो श्रील कवि कर्णपुर गौर गणदेश दीपिका में कहते हैं कि कलावती रसोल्लासा गुणतुंगा व्रजे स्थिता, हाँ, श्री विशाखा वृतम गायंती स्वाध्यता मता। ये तीनों भाई वृंदावन में विशेष सखिया है विशाखा की, और विशाखा देवी जो गीत रचती है, ये तीनों जो भाई है वो गाते हैं, उनकी सेवा ब्रज में क्या है, विशाखा देवी ने रचे हुए गीतों को, हाँ, गाना। तो इस प्रकार से इनकी जो समाधि है गोविंद देव टेम्पल जो मंदिर में है, जिनके सामने 64 समाधि क्षेत्र है, वहाँ श्रील वासुदेव घोष की समाधि है। श्रील वासुदेव घोष के श्री श्री चैतन्य चरितामृत के श्रील प्रभुपाद के हृदय गौर प्रेमानंदे किसी का